नमस्कार देवियों और सज्जनों, कैसे हैं आप सभी। और ए टॉक्स पोएट्री का एक एपिसोड जो है वो बहुत दिन से मैंने नहीं किया था, लेकिन आज मैंने सोचा कि मौका बिल्कुल सही है एक एपिसोड रिकॉर्ड करने का ए टॉक्स पोएट्री का। तो इसीलिए मैंने आज ये एपिसोड रिकॉर्ड करने का फैसला किया। और मैं ये एपिसोड क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है 40 रूल्स ऑफ लव। उसके ऑथर का नाम है एलिफ शफक। और ये कहानी है जो कि 40 रूल्स पर बेस्ड है, 40 रूल्स पर आधारित है, 40 कमांडमेंट्स भी कह सकते हैं हम उनको, या 40 अहम बातें जो प्रेम के कायदे कानूनों को डिफाइन करती हैं। ऐसी बात आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। इस कहानी में कुछ किरदार हैं, मैं किताब को डिस्कस करने के लिए ये एपिसोड रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। इस कहानी के जो किरदार हैं उनमें एक दो किरदार बड़े अहम हैं। पहला तो मौलाना रूम, जिन्हें मेरे दादा परदादा मौलाना रूम कह के बुलाते थे, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड जो है या जो पुरातन काल भी होगा उसमें भी लोग उन्हें रूमी के नाम से बुलाते थे। और दूसरा जो उनके आध्यात्मिक गुरु थे जिनका नाम था शम्स तबरेज, और उनके बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें नहीं जानते, क्योंकि मौलाना रूम के तो जो कलाम है उनकी मसनवी है या जो उनका दीवान शम्स है वो बहुत पॉपुलर है और बहुत से लोग उससे जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग उसको रेगुलरली रीड भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, बहुत सारी जगहों पर कहते भी हैं, बहुत सारी जगहों पर आपने सुना भी होगा, कोट्स बहुत फेमस हैं इंस्टाग्राम पर, और बहुत सारी जगहों पर ये सारी बातें होती हैं। तो क्योंकि जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ उसके अंदर जो 40 रूल्स ऑफ लव जो दिए गए हैं, जो 40 प्रेम के नियम हैं, वो दिए गए हैं शम्स तबरेज़ के द्वारा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने सुनने वालों को इससे अवगत कराया जाए कि शम्स तबरेज आखिर थे कौन। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो देवियों और सज्जनों, शम्स तबरेज कौन थे? मैंने इंटरनेट पे कुछ खोज की, इंटरनेट पे कुछ जगहों पे मैं गया, और जहां पर मुझे जो सोर्सेज सबसे ज्यादा ऑथेंटिक लगे उनमें से एक वेबसाइट है जो शायद, इसका नाम है sufinama.org। और मौलाना रूम का तो शायद मेरे पास भी थोड़ा बहुत कलाम पड़ा हुआ है और मैंने पढ़ रखा है, क्योंकि मुझे पारसी नहीं आती, अरबी नहीं आती, मगर फिर भी जो ट्रांसलेशंस होती हैं उसके आधार पर आप कुछ ना कुछ तो पढ़ ही सकते हैं और कुछ ना कुछ समझ सकते हैं। मगर मैंने कभी भी शम्स तबरेज का कोई कलाम नहीं सुना, कभी कोई उनका शेर नहीं सुना, उनकी कोई सूफी वाणी नहीं सुनी। मैंने उनके बारे में बहुत कम सुना है, जो भी सुना है वो इतना ही सुना है हर बार कि ये मौलाना रूम के गुरु थे, और बस इतना ही कि उन्होंने मौलाना रूम को अपनी आध्यात्मिक जर्नी के अंदर उन्होंने बहुत उनको जो है वो आगे बढ़ाया, उनको बहुत सपोर्ट किया, और वो कारण थे कि आप आज जिस रूम को या रूमी को जानते हैं वो शम्स तबरेज का शिष्य था और उसको अपनी आध्यात्मिक जर्नी में उन्होंने बहुत आगे पहुंचाया था। मित्रों, शम्स तबरेज मौलाना रूमी के आध्यात्मिक गुरु थे। रूमी ने अपने दीवान का नाम दीवाने शम्स रखकर इन्हें अमर कर दिया। रूमी की कविताओं में जगह जगह शम्स का नाम आता है और उनकी लेखनी के कौशल के पीछे शम्स की ही प्रेरणा थी। कहते हैं दमिश्क जाने से पहले शम्स ने अपने सबसे प्यारे शिष्य रूमी को कोन्या में 40 दिनों तक आध्यात्मिक शिक्षा दी थी। मैं मान के चल रहा हूं कि शायद इसी कारण से वो किताब को 40 रूल्स ऑफ लव कहा गया, क्योंकि देखिए अंग्रेजी एक बड़ी कमाल की भाषा है। अंग्रेजी भाषा में हर चीज को एक ऐसा फ्रेज दे दिया जाता है, एक ऐसा वर्ड दे दिया जाता है, एक ऐसा नाम दे दिया जाता है जो शायद उसकी रियलिटी को जस्टिफाई नहीं कर पाता। हम सुनते हैं लव, लेकिन लव जो है वो एक बहुत ही ऐसा शब्द है जिसका एक मीनिंग जो है बड़ा वाइड स्प्रेड है, और लव के अंदर बहुत कुछ आ सकता है। तो हाल फिलहाल जो 40 रूल्स ऑफ लव की बात हो रही है उनको आप 40 रूल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी कह सकते हैं, 40 रूल्स ऑफ रिलीजन नहीं कह सकते, क्योंकि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में बड़ा अंतर होता है, उस पर किसी और दिन बात करेंगे। मगर जो 40 रूल्स ऑफ लव हैं वो लव अलग अलग तरीके का लव है। कोई अपने गुरु को अपना भगवान मान लेता है, कोई भगवान को अपनी संतान मान लेता है, कोई हर एक में भगवान को देखता है तो कोई अपने आप में भगवान को ढूंढ लेता है। तो इसी प्रकार जो सूफी संतों का जो ट्रेडिशन था, इनफैक्ट सूफी संतों का ही क्यों, हमारे यहाँ पर भी अगर आप रामानंद संप्रदाय को देखें या जो दूसरे भी संप्रदाय हैं भारत में, उसके अंदर जो गुरु हैं और गुरु परंपरा के तहत आने वाले जो गुरु शिष्य हैं उनको एक दूसरे को उन्होंने भगवान का दर्जा दिया है और वो उन्हें भगवान से बढ़कर मानते हैं। अब अंग्रेजी में इसको लव कहा जाएगा, मगर बेसिकली वो सम्मान है, वो प्रेम है, वो जुड़ाव है, लगाव है, उसे किसी भी नाम से आप पुकार सकते हैं, मगर जो बेसिक एसेंस है वो सेम है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग कुछ बातों से बड़ी जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, उनकी गलती नहीं है, परंतु जैसे जैसे आपके ज्ञान का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे आपको चीज़ें बेहतर समझ आती हैं। रूमी से शम्स की पहली मुलाकात का किस्सा बड़ा दिलचस्प है। एक दिन काले पैरहन पहने एक शख्स कोन्या में दाखिल हुआ और वहां के व्यापारियों में घुल मिल गया। उसे कोन्या में ऐसी चीज की तलाश थी जो सिर्फ यहीं मिलती थी। अंत में उन्हें घोड़े पर सवार रूमी मिले। एक दिन रूमी किताबों का ढेर लगाए कुछ पढ़ रहे थे, संयोगवश वहां से शम्स का गुजरना हुआ। शम्स ने रूमी से पूछा, तुम क्या पढ़ रहे हो? रूमी ने उत्तर दिया, मैं जो पढ़ रहा हूं वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। यह सुनकर शम्स ने एक पुरानी और नायाब किताब उठाई और बगल में पानी की एक हौज में फेंक दी। रूमी ने जल्दी से कूदकर उस किताब को बाहर निकाला, पर निकलने के बाद उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि किताब पूरी तरह सूखी हुई है और उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं है। जब रूमी ने शम्स से पूछा, ये क्या है? शम्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मौलाना ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। इन दोनों गुरु शिष्यों का प्रेम एक मिसाल बन गया। कुछ साल कोन्या में बिताने के बाद शम्स खोए चले गए। शम्स कुछ सालों बाद ही आश्चर्यजनक तरीके से गायब हो गए। कहते हैं रूमी के अपने मुरीद ही शम्स और रूमी की दोस्ती से जलने लगे थे और उन्होंने ही साजिश करके शम्स की हत्या करवा दी। तो ये थी एक कहानी छोटी सी जो शम्स तबरेजी के बारे में कुछ उनके जीवन चरित्र में या उनके जीवन काल पर थोड़ा सा एक उस पर कुछ रोशनी डालती। इसके अलावा मुझे बहुत कुछ नहीं मिला और बड़े दुख की बात है कि शम्स तबरेज के ना तो कोई कलाम मिलते हैं, ना कोई उनकी कोई सूफ़ी कवालियाँ हैं, ना सूफ़ी कोई संतों की वाणी है या कुछ भी है, उनका कुछ बहुत पढ़ने को नहीं मिलता। मौलाना रूम का तो बहुत कुछ पढ़ने को सुनने को मिलता है, मगर मुझे खुशी इस बात की है कि आज भी हमारे देश में और हमारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इन लोगों की बातों पर अमल करना चाहते हैं, जो इन लोगों की बातों को समझना चाहते हैं और जो इन लोगों की बातों को अपने जीवन में उतार कर खुद को और अपने आसपास के लोगों को बेहतर बनाना चाहते हैं। मैंने सोचा कि आज से अच्छा मौका क्या होगा जब एक ऐसे सूफी संत की बात की जाए जिसने दुनिया को एक ऐसा सूफी संत दिया जिसने दुनिया की समझ, प्यार, मोहब्बत, रूहानियत और इंसानियत की तरफ बिल्कुल बदल के रख दी। तो मैंने सोचा कि ये छोटा सा एपिसोड मैं रिकॉर्ड करूँ आप सभी लोगों के लिए ताकि आप भी इस कहानी से अवगत हो सकें। और मैं ये वादा तो नहीं करता कि जब मैं ये किताब पूरी कर लूँगा तो उस पर कुछ चर्चा करूँगा, मगर हाँ मैं ये किताब पूरी ज़रूर करूँगा और अगर कुछ कहने लायक हुआ तो फिर आप सबके सामने प्रस्तुत हो जाऊँ। तब तक के लिए नमस्कार।